स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 7 जून, दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। ईरान की संसद और धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी की मजार पर हमले में कई लोगों की मौत, इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी। ब्रिटेन में संसदीय चुनाव के लिए कल होगी वोटिंग, क्या है मुद्दे?
हमारे लिए भी मेजर इश्यूज तो यही है कि ब्रेक्सिट, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए ना जो हमें ब्रेक्सिट के थ्रू लेके जा सके विद द नेगोशिएशंस।
और दुनिया जहान में सुनेगा, सऊदी अरब समेत कई देशों ने क्यों तोड़ा कतर के साथ राजनयिक संबंध और क्या है अमेरिका का पेंच?
देखिए, फौरी वजह तो ये बनी है कि एक मैसेज कतरी बादशाह का सामने आता है जिसमें ये कह रहे होते हैं कि खत्ते की स्टेबिलिटी के लिए ईरान बहुत जरूरी है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। ईरान की राजधानी तेहरान में संसद के भीतर और ईरान के पूर्व धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी की मजार पर आज गोलीबारी हुई जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान के डिप्टी आंतरिक मंत्री ने कहा है कि एक महिला के वेश में हमलावर संसद में घुस आया जहां उसने गोलीबारी की और खुद को उड़ा लिया। वहीं तेहरान में आयतुल्ला खुमैनी की मजार पर एक महिला फिदायीन हमलावर ने कई लोगों पर गोलियां चलाईं जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। म्यांमार के अधिकारियों का कहना है कि सेना का एक विमान लापता हो गया है। एयरपोर्ट के एक सूत्रों ने AFP को बताया है कि विमान में चालक दल के 11 सदस्य और 105 यात्री सवार थे। रिपोर्टों के मुताबिक विमान राजधानी यंगून से दक्षिणी म्यांमार के मेक शहर जा रहा था। विमान की खोज के लिए एक बचाव दल भेज दिया गया है। सेना के बयान में बताया गया है कि गायब होते वक्त विमान अंडमान सागर के ऊपर था। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक भारत प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने 2 चरमपंथियों को मार गिराया है। अभी इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है। श्रीनगर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं माजिद जहांगीर।
कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा के मत्सिल सेक्टर में सुबह से जारी मुठभेड़ में सेना ने अब तक 2 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है और कहा है कि यह ऑपरेशन अभी तक जारी है। इस बीच कल जिला शुपाया में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग में एक छात्र की मौत के खिलाफ आज जिला शुपियान में बंद बुलाया गया था। अलगाववादियों ने भी शुक्रवार को शुपिया में छात्र की मौत के खिलाफ कश्मीर बंद बुलाया है।
ये थे श्रीनगर से माजिद जहांगीर। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। 24 मई को माओवादी नेता पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गठबंधन दलों को दिए गए एक वादे के अनुसार प्रचंड ने स्थानीय चुनाव के पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा इससे पहले 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी सफलता का दारोमदार इस बार इस बात पर होगा कि वो संविधान संशोधन को संसद में पारित करवा पाते हैं या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के किंग सलमान से कतर के संकट पर बातचीत की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर को अलग थलग करने के लिए सऊदी अरब की तारीफ की थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका सभी पक्षों के संपर्क में है। कतर के साथ अरब देशों के संकट को सुलझाने के लिए कुवैत मध्यस्थता कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदेल अल जुबैर ने कहा है कि कतर अच्छी तरह जानता है कि रियाद और अन्य अरब देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए उसे क्या करना होगा। अदेल अल जुबैर ने कहा,
We want to see Qatar implement the promises it made a few years back with regard to its support for extremist groups, with regards to its
हम चाहते हैं कि कट्टरपंथी गुटों को समर्थन, मीडिया के नफरत भरे रवैये और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने को लेकर कतर ने कुछ साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे करे। जो ताज़ा कदम हमने उठाया है वो काफी दर्द के साथ उठाया है ताकि कतर समझ सके कि उसकी नीतियाँ स्वीकार नहीं की जा सकती और उनमें बदलाव आए। ये थे आदिल अल जुबैर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मंदसौर जिले में किसानों के आंदोलन के उग्र हो चुका है और आगजनी के बाद वहां के कलेक्टर के साथ भी धक्कामुक्की की गई है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ BBC हिंदी .com और मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, ईरान की राजधानी तेहरान में दो हमले हुए हैं जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। इन हमलों में देश की संसद और ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी की मजार को निशाना बनाया गया। हमलों की जिम्मेदारी कथित इस्लामिक स्टेट नामक चरमपंथी संगठन ने ली है। अधिकारियों का कहना है कि अब हालात सामान्य और नियंत्रण में हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
गोलियों की ये आवाज़ें ईरान की राजधानी तेहरान से हैं, जहां लंबे समय बाद चरमपंथ ने दस्तक दी है। ईरान की संसद और इस्लामिक गणतंत्र के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी की मजार पर हुए हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। तथाकथित चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने इन सुनियोजित हमलों की जिम्मेदारी ली है। रिपोर्टों के मुताबिक संसद पर हमला समाप्त हो गया है, यहाँ कई घंटों तक गोलीबारी होती रही। वहीं खुमैनी की मजार पर एक आत्मघाती हमलावर की मौत हो गई है। इस्लामिक स्टेट ने ईरानी संसद के अंदर का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने एक तीसरे हमले को नाकाम भी किया है। ईरानी सरकारी टीवी पर बताया गया।
اطلاعات اعلام کرد صبح امروز چند تیم تروریستی در شهر تهران برای عملیات تروریستی تلاش کردند.
خفیہ منترالیہ کے مطابق کئی سموہوں نے آج صبح تہران پر چرمپنتھی حملے کیے ہیں۔ چرمپنتھ رودھی وبھاگ کے مہانیدیشک نے بتایا ہے کہ حملہوروں کے ایک سموہ کو حملہ کرنے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ چرمپنتھیوں کے دو انیہ سموہوں نے سنسد بھون اور امام خمینی کے مزار پر حملہ کیا ہے۔ ईरान की संसद में हमले के वक्त सभी सांसद मौजूद थे। संसद परिसर में गोलीबारी की खबर के साथ इस हमले के शुरुआती अपडेट आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद यह साफ हो गया था कि यह ईरानी संसद पर एक बड़ा सुनियोजित हमला है। हमले में घायल हुए एक व्यक्ति ने बताया, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, अचानक गोलियां चली और सभी भागने लगे। मैंने देखा कि मेरी टांग से खून निकल रहा है, इसलिए मैं नज़दीक की सड़क की ओर भागा। फिर एम्बुलेंस आई और हमें अस्पताल लेकर आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक संसद के भीतर 4 हमलावर मारे गए हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 12 मृतकों में चरमपंथी शामिल हैं या नहीं। ईरान की आपात सेवाओं के प्रमुख पीर हुसैन के मुताबिक लगभग 40 लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। हमले के शुरुआती घंटों में संसद के भीतर लोगों को बंधक बनाए जाने की रिपोर्टें भी आई थीं, जिनका बाद में ईरानी अधिकारियों ने खंडन कर दिया। ईरान बीते सालों में सुरक्षित रहा है। इन सुनियोजित हमलों ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। ईरान में इस्लामिक स्टेट के हमले की वजह क्या है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार और पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा से।
भाई ये पहली बार इस तरीके से हुआ नहीं। ईरान काफी सिक्योर मुल्क था, उसने अपने को चारों तरफ से सिक्योर कर रखा था। इंटरनली भी उनके यहाँ कोई इस किस्म का डिसिडेंट नहीं था। शिकायतें जरूर हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस तरह की ये
क्या इसमें आपको शिया सुन्नी का भी मामला कुछ एंगल नजर आता है?
नहीं, बिल्कुल शिया सुन्नी तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ और गंभीर हो जाएगा। ये जो झगड़ा है और बढ़ेगा, ये कम नहीं होता दिखाई देता, इसलिए कि वहाँ के ऊपर देखिए दो आइडियोलॉजीज हैं इस वक्त मिडल ईस्ट में अमंग सुन्नी मुस्लिम्स में। वो एक है वहाबी सेल्फी और दूसरी जो है वो अख्वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड, और दोनों में काफ़ी कंपटीशन है और इन्फ्लुएंस, दोनों का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता कि वहाँ के ऊपर इस पूरे क्षेत्र में जो है वो अख्वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो कई वजहें हैं और वो एक फिर तीसरी चीज़ ये भी है, ईरान जिसके का इन्फ्लुएंस सीरिया इराक यमन और लेबनान में जिस तरह से बढ़ा है पिछले दिनों में, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, मिडल ईस्ट का हार्ट है, और उसको भी वो वहाँ पे भी बाकी अरब देश एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है। तो ये डिफरेंसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दोनों देशों में, और उसके कारण इस वर्ष हो ये रहा है कि आतंकवाद को बहुत सी जगहों से पैसा भी मिल जाता है और वो आतंकवाद को भी सपोर्ट करते
हैं। सर आखिरी सवाल ये बताइए कि ईरान में अभी रूहानी दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं, अब आपको क्या लगता है कि इस हमले के बाद ईरान में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति रूहानी के सामने क्या चुनौती होगी?
देखिए राष्ट्रपति रूहानी इंटरनल सिक्योरिटी वो मैनेज करेंगे, उनका दूसरा उनकी फॉरेन पॉलिसी में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, इसलिए कि उन्होंने एक ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है कि सभी देशों से अच्छे रिलेशन बनाएंगे, खासतौर से पश्चिमी देशों से। यूरोप से उनके अच्छे रिलेशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अमेरिका से भी उन वो कॉमर्शियल टाइज उनकी शुरू हो चुकी हैं, बोइंग जहाज वगैरह वो खरीद रहे हैं और दूसरी चीजें भी सैंक्शंस लिफ्ट होने के बाद उनकी बातचीत चल रही है। वो पश्चिमी देशों में उनके उनके तेल का भी सप्लाई जा रही है, उनके अलावा आने वाले समय में, और इस चीज को लेके ईरान के अंदर एक कंसेंसस है, यानी हार्डलाइनर और मॉडरेट दोनों ही इसमें ने जो है वो न्यूक्लियर डील जो थी पांच बड़े देशों के साथ दुनिया के, उसका समर्थन दिया है, क्योंकि उसको खमेनेई जो कि स्पिरिचुअल लीडर है वहां के, उनका भी समर्थन हासिल है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा चेंज आएगा।
ये थे पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में कल होने वाले आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव का ऐलान मौजूदा प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कुछ हफ्ते पहले किया था। उनका कहना था कि वो चाहती हैं कि यूरोपीय संघ से अलग होने यानी ब्रेग्जिट की प्रक्रिया वो सरकार आगे बढ़ाए जिसे जनता का समर्थन हासिल हो। इस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और यूकिप मैदान में हैं। सीधे चलते हैं लंदन अपने सहयोगी विनीत खरे के पास। विनीत, आज चुनाव प्रचार थम रहा है, सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, कैसा चुनावी माहौल देख पा रहे हैं आप? भारत जैसी गहमा गहमी है या एकदम अलग माहौल है?
मैं अभी थोड़ा बाहर लोगों से मिलकर आया हूँ, और जो भारत और ब्रिटेन के चुनाव की तुलना की, यहाँ मैं बता दूँ अगर आप बाहर यहाँ सड़कों पर निकल जाए लंदन में, तो लगेगा नहीं कि कल यहाँ पर चुनाव और इतने महत्वपूर्ण चुनावों के लिए लोग वोट डालेंगे। ना गहमा गहमी तो आप भूल जाइए, यहाँ पर अगर आप टीवी ना देखें या फिर अगर आप रेडियो ना सुनें तो लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर चुनाव है। आम दिनों की तरह जैसे माहौल होता है वो है, लोग अपने काम कर रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, ना पोस्टर ना बैनर ना स्पीचेस, अगर आपको कहीं लाउड स्पीकर कुछ नहीं है, शांत, और कल यहाँ वोटिंग होनी है।
तो फिर आखिर चुनाव प्रचार हो कैसे रहा है, नेता जो अपने मतदाता हैं उनसे मिल कैसे रहे हैं?
देखिए ज़्यादातर जो हो रहा है वो टीवी के माध्यम से होता है, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है होता है, लेकिन मुद्दों की जहाँ तक बात करें अमरीश, तो तीन चार मुद्दे पिछले दिनों हावी रहे हैं। यहाँ पर ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि क्या ये जो ब्रेग्जिट के लिए ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो बातचीत होगी वो उसके नतीजे क्या होंगे और क्या डील निकल कर आएगी। दूसरा मुद्दा जो है यहाँ पर रहा है वो NHS की बात होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं में कहा जाता है कि गिरावट आई है क्वालिटी में, उस पर कैसे काम किया जाए। तीसरा जो मुद्दा यहाँ पर रहा है वो है इमिग्रेशन का, कि बाहर से ब्रिटेन के बाहर से जो लोग आते हैं, यूरोपियन यूनियन के देशों से आते हैं, बाहर के देशों से आते हैं वो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है वो है सिक्योरिटी का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा। पिछले 3 महीनों में यहाँ पर 3 बार हमले हुए हैं, तो वो एक अचानक एक मुद्दा हावी हो गया है। मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था, हॉन्सलो हाई स्ट्रीट एक इलाका है जहां पर भारतीय हैं और ईस्ट यूरोपियन देशों के लोग रहते हैं या दुकानें हैं, वहां पर मेरी लोगों से बात हुई, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था।
तो क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट करेंगे? सिक्योरिटी एक इशू होगा, NHS, ब्रेग्जिट, बहुत सारे इश्यूज की बात कर रहे हैं, आप जो यहां रहते हैं उनके लिए क्या इश्यूज हैं?
हमारे लिए भी मेजर इश्यूज तो यही है कि ब्रेग्जिट, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए ना जो हमें ब्रेक्सिट के थ्रू लेके जा सके विद द नेगोशिएशंस, बिकॉज इट्स
जवाब कोई नहीं दे रहा है।
हाँ, कोई नहीं दे रहा,
सब कहते हैं कि नेगोशिएशन बातचीत होगी, देखेंगे क्या होता है,
देखेंगे नहीं। तो आई थिंक जो करंट लेडी है थ्रेज़ा मे, आई थिंक शी इज अ गुड कैंडिडेट।
हाँ, आपके लिए क्या इश्यूज हैं? सिक्योरिटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर आप जो भी भाषा में,
जॉब सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, यू नो हमारे लिए लाइक सेफ्टी एंड स्टफ, इंश्योरिंग दैट द पीपल हु आर इन दिस कंट्री कैन यू नो हैव अ लिविंग, द पीपल हु हैव बीन एजुकेटेड हैव गुड जॉब्स, एंड दोज अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली आर अवेलेबल फॉर दोज पीपल हु हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री।
तो आपने थेरेसा मे की तारीफ करते हुए सुना, कुछ लोग जर्मी कॉर्बिन जो लेबर कैंडिडेट हैं, उनकी लेबर नेता हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या है जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, कहा जा रहा है कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी कल के चुनाव में।
विनीत खरे लंदन से, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब भारत का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मंगलवार को 6 किसानों की गोली लगने से हुई मौत के बाद राज्य में कई जगह हिंसा की खबरें हैं। मंदसौर में कर्फ्यू अभी भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संयम बरतने की अपील की है। किसानों के साथ हुई हिंसा की गूंज आज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई पड़ी। कांग्रेस और CPM ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों के मुद्दे की अवहेलना का आरोप लगाया। सुनिए शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
मंदसौर में मंगलवार को पुलिस फायरिंग में मारे गए 6 किसानों का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। किसानों के परिवार वाले इस बात पर अड़ गए थे कि अंतिम संस्कार में शिवराज सिंह चौहान आए। शवों को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया गया। आखिर में किसानों के परिवार वालों ने उनके शवों को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार किया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने किसी को भी मंदसौर सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। मंदसौर के किसानों ने आरोप लगाया कि उन पर जानबूझकर गोलीबारी की गई।
प्रशासन बोल रहा है कि किसानों में से किसी ने गोली चलाई है, ये उनका बिल्कुल झूठा आरोप है, ये सरासर गलत है। आप खुद उस गोली का कारतूस उसकी जांच करवाई जाए कि ये वाकई में कहां से आया है, तो पता चलेगा गोली गांव की थी या पुलिस वालों की थी।
वहीं कल हुई घटना के बाद आज प्रदेश में बंद रखा गया। कई स्थानों पर हिंसा हुई। देवास की हाट पिपलिया मंडी में आग लगा दी गई। वहीं हाईवे पर बसों में तोड़फोड़ की गई। किसानों के बढ़ते गुस्से को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर सारे हालात के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया।
मेरा मन बहुत बेचैन और व्यथित है। मंदसौर जिले में आंदोलन के दौरान जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें हमारे साथियों की जान चली गई। कांग्रेस ने सुनियोजित प्रयास किया था आंदोलन में हिंसा भड़काने का, उसकी बलि कुछ साथी चढ़ गए। मैं उनके परिजनों की वेदना को समझ सकता हूं। मैं प्रदेश की जनता से, किसान भाइयों से फिर अपील करना चाहता हूं, शांति बनाए रखें। सरकार किसानों के साथ है, जनता के साथ है।
उधर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने भी पत्रकार वार्ता बुलाकर आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मौत के आंकड़े छुपा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर असामाजिक तत्वों से आग लगवाई ताकि किसानों पर गोली चलाई जा सके।
आंदोलन में असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो चुका है और उसके 3 घंटे बाद गृह मंत्री कहते हैं कि सख्ती से निपटाएगा और अगले दिन गोली चलती है। सरकार ने अपने ही असामाजिक तत्वों से आग लगवाई और ताकि फायरिंग करने को जस्टिफाइड कर सके।
मंदसौर, पिपलिया मंडी, नाहरगढ़ और मल्हारगढ़ में आज भी कर्फ्यू जारी रहा। इसके साथ ही मंदसौर, नीमच और रतलाम में इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो हमेशा अपने आप को किसान होने का दावा करते रहते हैं, इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन की एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि गोली से मारे गए किसानों के लिए पहले उन्होंने 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की, जिसे बाद में 10 लाख किया गया और अंत में उसे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
संयुक्त अरब अमीरात ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने कतर के लिए सहानुभूति जताई तो उसे 15 साल जेल की सजा दी जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कतर के समर्थन में सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म का संदेश पोस्ट करना अब साइबर अपराध माना जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन, यमन, लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ चुके हैं। कल शाम अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए ये दावा किया था कि उनके कहने पर ही मुस्लिम देश कतर से अलग हुए हैं। हालांकि कतर और सऊदी अरब के बीच इस संकट को हल करने का प्रयास लगातार जारी है। कुवैत के अमीर इन देशों के बीच मध्यस्थता का नेतृत्व कर रहे हैं। कतर संकट की कूटनीतिक स्थितियों की पड़ताल कर रहे हैं। मोहनलाल शर्मा, दुनिया जहान में।
दुनिया जहान। तेल और गैस के अपार भंडार वाला अरब जगत का एक छोटा देश कतर। ये गैस के कुएं ही थे जिसके जरिए कतर ने इतनी दौलत कमाई कि वो दुनिया के सबसे रईस मुल्कों की सूची में शामिल हो गया। रेत के टीलों वाले इस देश ने कुछ इस तरह से अपना ढांचा बदला कि आज चमकती इमारतें आकाश को छूने की होड़ में नजर आती हैं। कतर की चर्चा उसकी संपदा, उसकी दौलत के चलते ही होती है, लेकिन खाड़ी देशों ने अब इसी कतर को अलग थलग कर दिया है। राजनयिक संबंध खत्म करने वाले देशों में हैं सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन और लीबिया। इन देशों ने एक सुर में कतर पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्र में कथित इस्लामिक स्टेट और चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा है। सऊदी अरब के टीवी चैनल पर इस प्रतिबंध की घोषणा की गई।
सऊदी सरकार ने आतंकवाद और अतिवाद के खतरों से देश की रक्षा करने के लिए अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कतर से अपने राजनयिक संबंध तोड़ने का फैसला किया है। वो कतर से हर तरह के संपर्क यानी जमीनी, हवाई और समुद्री संपर्क भी खत्म कर रही है।
उधर कतर ने इन चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले आरोपों का खंडन किया है। चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले इन आरोपों में कितना दम है, मैंने पूछा कतर में 12 साल रह चुके अल जजीरा के पूर्व पत्रकार और वर्तमान में हिंदुस्तान टाइम्स के नेशनल अफेयर एडिटर रुबिन बनर्जी से।
आरोप लगाना तो जो भी चाहे मन में चाहे आए बोले, बट कितना सही है गलत है हमको मालूम है। लाइक सऊदी अरेबिया से क्या क्या फंडिंग होता है, हमारा ये जो वहाबी इस्लाम जो है वो उसका तो बहुत सारा इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में हुआ है, वो लोग फंडिंग भी कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा जो कतर किसको पूरा ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग नहीं कर रहे, ये लोग के पास बहुत पैसा है और कोई, मगर ये भी बोलना जो कतर अलकायदा का है क्या, कतर तालिबान है, कतर आईएस को पैसा दे रहे हैं, मेरे को लगता है ये पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
मध्य पूर्व एशिया में अरब क्रांति के दौरान कतर पर मिस्र के पूर्व इस्लामिक राष्ट्रपति का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन का दर्जा देते हैं, लेकिन कतर ने इस संगठन के सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। कतर मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का भी पुरजोर समर्थक है। मोहम्मद मुर्सी हिजबुल्ला के सदस्य थे जिसे कई अरब देश चरमपंथी संगठन मानते हैं। चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगाकर जिस तरह से सऊदी और अन्य देशों ने कतर से राजनयिक संबंध तोड़े, इसकी तात्कालिक वजह क्या थी, चरमपंथ का मुद्दा या फिर कुछ और? पाकिस्तान के लाहौर में पत्रकार राशिद हुसैन इस्लामी दुनिया की राजनीति को समझते हैं।
देखिए फौरी वजह तो ये बनी है कि एक मैसेज कतरी बादशाह का सामने आता है जिसमें ये कह रहे होते हैं कि खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए ईरान बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद ये होता है कि कतरी हुकूमत उससे किसी हद तक पीछे हटने की कोशिश करती है और ये कहती है कि ये मैसेज हैक हुआ है, ये उनकी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है। लेकिन उस पर इस पूरे खित्ते में दूसरे अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन और फिर यमन की वो हुकूमत जो सऊदी अरब से बैठ के ऑपरेट कर रही है, उनका एक बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आता है। ये उसी मैसेज का जवाब है जिसको कतरी हुकूमत ये कहती रही है कि ये दरअसल उनकी ऑफिशियल पोजीशन नहीं बल्कि हैक मैसेज की कहानी है।
लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब कतर से इस्लामी दुनिया के देशों ने संपर्क तोड़े हो। 2014 के मार्च महीने में भी सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर पर उनके आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए अपने राजदूत वापस बुलाए थे। तो इसका मतलब इसकी जड़ें लंबी और गहरी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशिया मामलों के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा बताते हैं कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई।
जेनेसिस ईरानियन रेवोल्यूशन से लेके ईरान को रेजिम चेंज, ईरान इराक वार और दूसरे अन्य मेजर से सक्सेस नहीं हुए और सऊदी अरेबिया और जो खाड़ी के मोनार्किंग्स है वो परेशान है ईरान से। दोनों की कोल्ड वार जो है हॉट वार में बदल गई है कई क्षेत्रों में, बहरीन, इराक, सीरिया, यमन, लीबिया, हालांकि इजिप्ट में भी। तो बेसिकली ये अरब पर्शियन था, उसके बाद शिया सुन्नी हुआ और अब सऊदी अरेबिया ईरान हो गया है। और कतर पहले से ही जो है ईरान के हक में है क्योंकि उसके गैस के भंडार जो है ईरान के गैस भंडारों से लिंक हुआ है। तो ये जो बेसिक सऊदी इनसिक्योरिटी है ईरान से अब उभर के आ रही है।
जब कतर से 6 देशों ने राजनयिक संपर्क तोड़ लिए, जल थल और वायु मार्ग से संपर्क पर रोक लगाई, तो इस तरह की खबरें मीडिया में आई कि कतर के शहरों में रह रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मची है। लोगों में घर का राशन और जरूरी सामान खरीदने की होड़ लगी हुई है। वहाँ क्या चल रहा है, मैंने बात की बिहार के किशनगंज से कतर की राजधानी दोहा पहुँचे पत्रकार शुएब अहमद से।
बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा है।
हाँ ये है कि इनिशियली जब ये न्यूज, चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को सब चीजें पता चल जाती है, वायरल हो जाता है, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया था बल्क में। जर्नलिस्ट या एज ए जैसे रेजिडेंट ऑफ कतर मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ, हम लोगों ने पिक्चर लेकर के आए, कल के और आज के पिक्चर्स हैं, जैसे कोई चीज खरीद के खत्म कर दिया लोगों ने, ले लिया बल्क में खरीद करके, वहाँ पे फिर रिफिल कर रहे हैं, जंगल की आग की तरह फैल जाती है बात। अब कुछ कुछ फ्लाइट्स वगैरह ग्राउंडेड हुए हैं, लेकिन अल्टरनेटिव रूट्स हैं, क्योंकि कतर जो है तीन तरफ से है गिरा हुआ, लेकिन एक तरफ से सी रूट जो है ओपन है।
अरब देशों ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब खाड़ी देशों और उसके पड़ोसी ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। हालिया अरब यात्रा पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इस घटना को अमरीका के दोस्त कहे जाने वाले ताकतवर खाड़ी देशों के बीच एक बड़ी दरार की तरह देखा जा रहा है। राशिद हुसैन,
देखिए कतर इन मामलों से पहले भी गुजर चुका है, कतर इन पर डिपेंडेंट नहीं है और नहीं ये डिपेंडेंट है कतर के ऊपर, लेकिन जो बुनियादी बात है वो इन तमाम चीजों का वो निकल करके ये आ रहा है कि वो जो 54 ममालिक के इत्तेहाद को बनाने की कोशिश हो रही थी, उस इत्तेहाद के को बने हुए अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, पहली दरार है उसमें, एंटी ईरान इत्तेहाद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा है।
अब सवाल यह है कि इस्लामी देशों के राजनयिक संपर्क तोड़ने और तमाम प्रतिबंधों के बाद क्या वाकई कतर दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा? कतर के पास क्या विकल्प है? इस संकट का भविष्य क्या है? रुबिन बनर्जी,
थोड़ा बहुत बातचीत करके सुलझ जाएगा, क्यों ना नहीं सुलझेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। कतर ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना लेगा तो सऊदी अरबी के लिए, पूरा रीजन के लिए और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। कतर चाइना के साथ स्ट्रेटेजिकल अलायंस अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेगा तो उसमें अमेरिका क्या साउथ अरेबिया का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं और कुछ तो अंडरस्टैंडिंग निकल के आना ही चाहिए।
मोहनलाल शर्मा, बीबीसी।
दुनिया जहान के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब चलते चलते थोड़ी चर्चा खेलों की भी करते चलें। इंदु पांडे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी इंदु, बर्मिंघम के मैदान में क्या चल रहा है?
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आज आमने सामने हैं और ये चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां मैच है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बैटिंग अभी वो कर रहा है, जिसमें कि उसके 4 विकेट डाउन भी हो गए हैं और 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं वो लोग। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी लय में नज़र नहीं आई थी, लेकिन आज टूर्नामेंट में बने रहने के लिए पाकिस्तान को जीत दर्ज करनी होगी। हालांकि उनकी राह काफ़ी मुश्किल है। दूसरी तरफ प्रोटीज टीम की नज़र लगातार दूसरी जीत पर है, क्योंकि इसके बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने पर उनका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
जी, और फ्रेंच ओपन की बात करें तो आज एक बड़ा उलटफेर हुआ है।
जी हाँ, खिताब बचाने के लिए उतरे नोवाक जोकोविच का फिर से फ्रेंच ओपन खिताब जीतने का सपना टूट गया है। जोकोविच को डोमिनिक थीम ने सीधे सेटों में मात दे दी है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए इंदु पांडे। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। ईरान की राजधानी तेहरान में संसद के भीतर और ईरान के पूर्व धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी के मज़ार पर हुई गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। म्यांमार में सेना का एक विमान लापता हो गया है। विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार हैं। कल ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है। भारतीय प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने 2 चरमपंथियों को मार गिराया है। अभी इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। स्थानीय पत्रकार शोर नियाजी के मुताबिक इस धमाके में 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया राजेश चौहान ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें और उनका विश्लेषण जानने के लिए जुड़े रहिए बीबीसी हिंदी bbchindi.com के साथ। नमस्कार।